आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट के बजट इजलास का 3 रोजा खसूसी इजलास आज से शुरू हो रहा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आईनी तरमीमात पर बहस की जाएगी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत घरों की फहरिस्त बंदी और घर घर जाकर मर्दुमशुमारी की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ काबीना ने यकसा सिविल कोड का मुसवदा तैयार करने के लिए आला सतही कमेटी की तशकील को मंजूरी दी है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुजाकरात करेंगे। भारत ने माली साल 2025-26 में 860 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात की। और शतरंज में खबरों में भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने खवातीन का फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का 3 रोजा खसूसी तौसी इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आईनी तरमीमात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हुकूमत 3 तरमीमी बिल मुतारिफ कराएगी, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर अमलावरी की राह हमवार करेंगे। ये 3 बिल हैं, 131वां आईनी तरमीमी बिल 2026, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 और हदबंदी बिल 2026। 131वीं आईनी तरमीमी बिल 2026 के जरिए भारत के आईन में मजीद तरमीम की जाएगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 के जरिए मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमत के कानून 1963, कौमी राजधानी दिल्ली की हुकूमत के कानून 1991 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून 2019 में तरमीम करने पर की तजवीज़ है। हदबंदी बिल 2026 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए लोकसभा की सीटों की तश्कील नौ की गुंजाइश फराहम करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को साल 2023 में मंजूर किया गया था, जिसमें लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने की तजवीज पेश की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खसूसी इजलास का मकसद आईन में तरमीम करना है, ताकि हलकों की हदबंदी के अमल के बाद साल 2029 के लोकसभा इंतखाबात में खवातीन रिजर्वेशन कानून को नाफिज किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में ऐवान के रहनुमाओं को खत लिखकर तरमीमात को इत्तिफाक राय से मंजूर करने की अपील की थी। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि साल 2029 के लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात का इनेकाद खवातीन रिजर्वेशन पर अमल करते हुए किया जाए। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी यकीन दिलाया है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल मुतवाजिन है और इसमें हर रियासत, बिरादरी और खित्ते की ख्वाहिशात का ख्याल रखा गया है।
ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। सब मिलकर के एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करेंगे।
बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और कांग्रेस समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों ने दोनों ऐवानों के अपने अराकीन पार्लियामेंट को 3 सत्री व्हिप जारी की है और उन्हें इजलास के दौरान ऐवान में मौजूद रहने और पार्टी के मौकिफ की हिमायत करने की हिदायत दी है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
इस दौरान कांग्रेस सदर और राज्यसभा में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अपोजिशन जमातें खवातीन रिजर्वेशन बिल के हक में हैं, ताहम उन्होंने बिल लाए जाने के तरीकेकार से मुतालिक तहफुजात का इजहार किया है। नई दिल्ली में INDIA इत्तेहाद की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब खड़गे ने दावा किया कि खवातीन रिजर्वेशन बिल के पीछे सियासी मकासद कार फरमा है। हदबंदी बिल पर इजहार ख्याल करते हुए कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि सभी अपोजिशन जमातें हदबंदी की गुंजाइशों के बिल्कुल खिलाफ हैं। जनाब जयराम रमेश ने कहा कि सभी अपोजिशन जमातें लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल पर होने वाली बहस में हिस्सा लेंगी और बिल की मुखालफत करेंगी। वजारत दाखिला ने साल 2027 की मरदमशुमारी के पहले मरहले के तहत घरों की फहरिस्त बंदी और घर घर जाकर मरदमशुमारी की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। मर्दुमशुमारी का ये काम आज से मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू होगा। एक बयान में वजारत ने कहा कि मर्दुमशुमारी की यह कार्रवाई आज कौमी राजधानी में NDMC और दिल्ली छावनी इलाकों के साथ साथ अंडमान निकोबार जजायर, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में अंजाम दी जाएगी। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने रियासत में यकसां सिविल कोड UCC के निफाज से मुतालिक मुसविदा तैयार करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। यह फैसला कल रायपुर में वजीर आला विष्णु देव साई की सदारत में हुई काबीना मीटिंग के दौरान लिया गया। इस कदम का मकसद मजहबी और सिन्फी मसावात को फरोग देने की खातिर कवानीन को आसान बनाना है। सुबुकदोश जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई पैनल की क्यादत करेंगी, जबकि वजीर आला को पैनल के अराकीन नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने, नानो नफका और खानदानी तनाजात के मामले मुख्तलिफ मजाहब के पर्सनल लॉज की बुनियाद पर तय होते हैं। ये कमेटी मुसविदा तैयार करने के लिए शहरियों, इदारों और माहिरीन की राय तलब करेगी, जिन्हें कानूनी अमल के बाद रियासती असेंबली में पेश किया जाएगा। भारत के आईन की दफा 44 रियासतों को सभी शहरियों के लिए यकसां सिविल कोड नाफिज करने के काम में रहनुमाई करती है। मगरबी बंगाल रियासती असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 23 अप्रैल को रियासत के 152 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। असेंबली हलकों का जायजा लेने की सीरीज के तहत आज शुमाली बंगाल के राजगंज असेंबली सीट पर नजर डाली जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
राजगंज असेंबली हलके में पहले मरहले के तहत 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल ये सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है, जहां रुकने असेंबली खागेश्वर राय 15 साल से इस नशिस्त की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस मरतबा इंतखाबी मैदान में 5 आजाद उम्मीदवार समेत कुल 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने दिनेश सरकार को जबकि तृणमूल कांग्रेस ने स्वपन बर्मन को इस सीट के लिए टिकट दिया है। CPIM ने खारेंद्र नाथ राय को जबकि कांग्रेस ने तुषार कांति राय को मैदान में उतारा है। इस सीट पर असल मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने के मकसद से आज नई दिल्ली में मुज़ाकरात करेंगे। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ फोरम्स में तआवुन बढ़ाने समेत आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर स्टॉकर की बातचीत से मुख्तलिफ शोबों में ज्यादा तआवुन के नए मौके पैदा होंगे। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि चांसलर स्टॉकर के हमरा माशी तवानाई और सियाहत के उमूर के विफाकी वजीर, सीनियर एहलकार और कारोबारी रहनुमा एक आला सतही वफ्द के साथ भारत के दौरे पर आएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
चांसलर स्टॉकर का एशिया का अपना पहला सरकारी दौरा होने के साथ साथ भारत का ये पहला दौरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान गर्मजोशी, दोस्ताना और कसीर जहती ताल्लुकात हैं, जिनकी जड़ें मुश्तरका जमहूरी अकदार पर मबनी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा किया था और दोनों मुल्कों के दरमियान ये ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। चांसलर स्टॉकर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के नए शोबों में शराकत दारी को मजीद गहरा और वसत देने के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। सुपर्णा साइकिया और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने माली साल 2025-26 के दौरान 860 अरब अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि आलमी उथल पुथल के बावजूद ये संगे मील आलमी तिजारती मौजूदगी में वसत देने की भारत की बढ़ती ताकत और लचक का मुजाहरा करता है। जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 9 तिजारती समझौतों का हतमी शक्ल दी गई, जो इस रफ्तार में मजीद इजाफा कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों में नए बाजारों के साथ साथ ज्यादा मौके फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कारोबार में आसानी और कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत की कोशिशें इस रफ्तार को मजीद तकवियत फराहम करती रहेंगी, जिससे विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर को इस्तेहकाम मिलेगा। मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ रही है और अमरीका ने ईरानी साहिलों पर अपनी बहरी नाकाबंदी सख्त कर दी है। उधर इसराइली फौज जुनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाई जारी रखे हुए है। हालांकि जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि नाकाबंदी के पहले 48 घंटे के दौरान کوئی بھی جہاز امریکی فوجیوں کے آگے سے نہیں گزرا ہے اور کم از کم 9 جہاز واپس گھوم کر ایرانی سمندر کی جانب لوٹ گئے۔ اس دوران اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے بدستور جاری ہیں۔ لبنانی حکام نے ہوائی حملوں میں جانی نقصان کی اطلاع دی ہے۔ مرنے والوں میں طبی عملے کی ٹیم بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوجوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران حزب اللہ کے تقریباً 200 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمالی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے ہیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے دونوں فریقوں نے براہ راست مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل نے اس مہینے کے شروع میں بڑے پیمانے پر ہوائی حملوں کے بعد سے بیروت میں حملوں سے گریز کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں حملے شروع کر دیے تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
ایران کی جانب سے یہ وارننگ جاری کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ اہم بحری چیک پوائنٹس میں جنگ کو وسعت دے سکتا ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹرز کے ذریعے ایران کی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی ناکابندی سے ایران کے تجارتی جہازوں اور تیل کی برآمدات کو کوئی خطرہ پیدا ہوا تو تہران، خلیج فارس، عمان کے سمندر اور باب الہند مندیب ہرمز میں تجارتی راستوں میں رخ نہ ڈال سکتا ہے۔ ایران یمن میں حوثی سمیت اپنے سبھی حلیف گروپوں پر انحصار کرتا ہے تاکہ سمندر سے گزرنے والے جہازوں کو اسی طرح نشانہ بنایا جا سکے جس طرح بحیرہ احمر میں ماضی میں حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس طرح کے اقدام سے توانائی کی عالمی سطح پر آمد و رفت اور بین الاقوامی تجارت پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے علاقائی سطح پر بھی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران نے امریکی بحریہ کی ناکابندی کو موجودہ جنگ بندی سے متعلق سمجھوتے کی خلاف ورزی بتایا ہے، جبکہ فوجی کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
امریکہ میں بھارتی سفیر ونے موہن کواترا نے واشنگٹن میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر اور سابق قومی سلامتی مشیر رابرٹ اوبرائن سے ملاقات کی۔ یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب بھارت اور امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے باریک پہلوؤں پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ معاہدے پر تبادلہ خیال کے لیے بھارتی حکام پر مشتمل وفد کے امریکہ دورے کی توقع ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں ایک ٹرین سے ٹکرانے کے بعد 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ کل رات 8 بجے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس اور ریلوے کی ٹیمیں فوراً جائے حادثے پر پہنچی اور لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق حادثے میں مرنے والے افراد کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حادثہ کرچنا علاقے میں پچ دیورا ہالٹ پر پیش آیا۔ شطرنج میں بھارتی گرینڈ ماسٹر آر ویشالی نے خواتین کا فیڈے کینڈیڈیٹ ٹورنامنٹ 2026 جیت لیا ہے۔ 24 سالہ ویشالی نے قبرس میں آخری راؤنڈ میں روس کی کیٹرینا لیگنو کو شکست دی۔ ویشالی نے 14.5 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے پارلیمنٹ کا 3 روزہ خصوصی اجلاس آج سے شروع ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس اجلاس میں ناری شکتی وندن ادھینیم سے متعلق کلیدی آئینی ترمیمات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، ایران امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری، مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان جلد۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اپنے اسرائیلی اور آسٹریلوی ہم منصب کے ساتھ فون پر گفتگو کی۔ سی بی ایس ای 10ویں جماعت کا نتیجہ جاری، تقریباً 94% طلبہ کامیابی سے ہمکنار۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا 3 روزہ خصوصی اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں ناری شکتی وندن ادھینیم میں آئینی ترمیمات پر بحث کی جائے گی۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت گھروں کی فہرست بندی اور گھر گھر جا کر مردم شماری کی کارروائی آج سے شروع ہو رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کابینہ نے یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کو منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں آسٹریا کے چانسلر کرسٹین اسٹاکر سے مذاکرات کریں گے۔ اور بھارت نے مالی سال 2025-26 میں 860 ارب ڈالر کی ریکارڈ برآمدات کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔